कभी ये पूछा कि मुफ्ती साहब तुम सहरी कहाँ करते हो, कभी ये पूछा कारी साहब इफ्तारी कहाँ होगी। जिसको देखो मुफ्ती साहब यहाँ एक ही बात है, बयान बयान। अभी भी हमारे एक बड़े भाई मिले थे, अब बयान। कोई ये नहीं कहता कि मौना इफ्तारी मेरे घर करके जा, क्योंकि मालूम है इफ्तारी सहरी ऐसा टाइम है ना, इतना घचाघच वाला टाइम है, ये काम मुफ्ती को बीच में लेके आ। जिसको देखो बयान के लिए बेटा बेटा बोलता है 1 घंटा बाकी है। हालांकि हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं कि मौलाना इफ्तारी मेरे घर कर लेना। और अगर मौलाना बोले मैं नहीं करता तो चलो मैं लेकर आया, मौलाना आप इफ्तारी लेकर। अब क्या करे, तू बाजू में बैठा है, वैसे मैं जा रहा था कारी साले पर तू नजर आ गया। भाई मैं आज आपको एक अजीब बात बता रहा हूं, अल्लाह की कसम दिल खुश हो जाएगा। बोलो ना। मैं बता रहा हूं ना आपको, तो बैठे बैठे सुनना है ना, सिर्फ इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलना, वो भी ना बोलेंगे। आपको एक अजीब बात बताऊं, कि लिखा एक वाकया लिखा है कि रूम का, रूम रूम नाम सुना ना, रूम रूम में कोई था बूढ़ा था, 80 साल का बूढ़ा था, कितने साल का, 80 ईयर्स ओल्ड बूढ़ा था। और उस जमाने में कहा जाता था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नॉलेज ये बूढ़े के पास है, इसलिए कि वो जो बूढ़ा था ना रूम का रहने वाला था, और 80 साल उसकी उम्र थी, और पूरी जिंदगी पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इल्म नॉलेज एजुकेशन। कहा जाता था कि साइंस का मैदान हो तो कोई उसका मुकाबला ना करे, हिस्ट्री का मैदान हो तो कोई उसका मुकाबला ना करे, अरे टेक्नोलॉजी का मैदान हो तो कोई उसका मुकाबला ना करे, फिलोसॉफी का मैदान हो तो कोई उसका मुकाबला। और जब डिबेट करता था, मुनाजरा करता था, तो बड़े बड़ों को हरा देता था। और जब वो चलता था, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉलेज वाला इल्म वाला जब वो चलता था, तो कम अज कम 100 100 जवान उसके पीछे पीछे चला करते थे। वो रूम का बूढ़ा था, बस एक खराबी उसमें थी, अल्लाह को नहीं मानता था। कहता था अल्लाह नहीं, अल्लाह को नहीं मानता था। वो बूढ़ा जो था ना, पूरे वर्ल्ड में उसका नॉलेज था, उसका इल्म था, उसका एजुकेशन था, उसकी तालीम थी, उसका इल्म था, उसका हुनर था, और सब सब मैदान में वो सबसे आगे था। कहा जाता ना कि जब वो कहीं जाता था तो 100 100 स्टूडेंट उसके पीछे पीछे चला करते थे। उसने ये खबर भेजी कि मैं यहां कूफा पहुंच रहा हूं। कहां पहुंच रहा है? कूफा। अब उस जमाने का जो बादशाह था, जो भी बादशाह होगा उस जमाने का, उसने कहा कि इतना बड़ा रूम से आदमी आ रहा है, 80 साल का बूढ़ा आ रहा है, और इल्म और नॉलेज और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे पहुंचा हुआ है। इसलिए बादशाह ने यह कहा कि जब वो आएगा उसके साथ 100 आदमी होंगे, हम सब बाहर लेने के लिए जाएंगे, उसका इस्तकबाल होगा। बड़े इस्तकबाल के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, घोड़े लेके, हाथी लेके, बड़ी बड़ी सवारी लेके उसका इस्तकबाल हुआ। और बादशाह ने ऐलान किया, उस जमाने के खलीफा ने, बादशाह ने ऐलान किया कि ये बूढ़े आदमी को मेरे मेरे शाही महल में लेकर जाए, वहां खाना खिलाए, और उसके बाद जो तख्त पर मैं बैठूंगा उसके करीब वैसा ही तख्त बनाया जाए, और ये बूढ़े को वहां बिठा दिया जाए। अब वो तो एहतराम है, इल्म का, नॉलेज का, एजुकेशन का, आ गया वो बूढ़ा, आ गया। बोलो वो बूढ़ा आ गया। अरे पूरा 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 सारे लोग जमा, अरे मजमा, हजारों का, लाखों का मजमा जमा, और स्टेज लगाए, और स्टेज के ऊपर 2 तख्त है, कितने तख्त। और आज तक ये होता था कि स्टेज पर एक ही तख्त होता था, वो बादशाह का होता था, खलीफा का होता था, लेकिन आज एक तख्त और भी लगा है जिस पर कौन बैठा है, वो बूढ़ा, और पूरा मजमा जमा है, पूरा मजमा। अब वो बूढ़ा जो है ना, वो खलीफा को क्या कहता है, खलीफा को कहता है कि आपके इलाके के जितने उलमा है सबको जमा कर दो, आपके इलाके के जितने उलमा है ना, कुरान हदीस वाले, सबको जमा कर दो, मैं उनके साथ मुनाजरा डिबेट करना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा सब है यहीं पर है, अरे सारा पूरा पूरा शहर इधर आ गया है, हजारों लाखों का मजमा है। तो ये बूढ़ा क्या कहता है, उलमा को कहो कि खड़े रहे, और कोई एक आलिम ऐसा हो कि मैं 3 सवाल पूछूं, मेरे 3ों सवाल का जवाब दे दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा, और अगर जवाब ना दे तो खलीफा को कहा मेरा हुक्म है उसकी गर्दन उड़ा दी जावे। अब खलीफा ने कहा कि भाई सारे उलमा खड़े हो जाओ। हो गए सारे उलमा, इतना बड़ा मजमा, हजारों हजार उलमा खड़े हो गए। फिर खलीफा ने कहा कि ये जो 80 साल का बूढ़ा रूम से आया है, ये उलमा से 3 सवाल पूछना चाहता है, जो जवाब देगा ये उसका गुलाम बन जाएगा, और जो जवाब नहीं देगा मुझे हुक्म है कि उसकी गर्दन को। तो कौन जवाब देने के लिए तैयार है वो खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। क्या हुआ नतीजा, सब अरे काय को अपनी गर्दन उड़ा देने का। और ये तो 80 साल में यही काम किया है, पढ़ना लिखना, पढ़ाना लिखाना, मुनाजरे करना, डिबेट करना, मेरे दोस्तों सब बैठ गए, लेकिन एक 22 साल का जवान जिसके कपड़े भी फटे फटे हैं, वो दूर खड़े, काम में तैयार हूं। वो कौन थे? हमारे इमाम, इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो हमारे इमाम, इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम था नौमान, वो खड़े रहे। तो जब ये बूढ़े ने देखा कि 20-22 साल का जवान खड़ा है और वो जवाब देने को तैयार है और वहां से कह रहा मैं जवाब देने को तैयार हूं, तो ये बूढ़े ने क्या कहा? ये बूढ़े ने कहा, जवान अभी तो जवानी में कदम रखा है, अभी तो तेरी 20 साल की उम्र है, तू मेरे 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और ये बादशाह तेरी गर्दन उड़ा देगा। अरे जवानी में काय को मरता? तो इमाम अबू हनीफा ने वहां से जवाब दिया, अरे ये क्या मेरी गर्दन उड़ाएगा और तू क्या मुझे मारेगा? मारने वाला भी अल्लाह है, जिलाने वाला भी अल्लाह है। इमाम साहब ने वहीं से पढ़ा, युही व युमीत, अल्लाह ही है जो जिलाता भी है, अल्लाह ही है जो मारता। तो ये तो अल्लाह को मानता, मैं बूढ़ा जो बैठा था अल्लाह को मानता, और गुस्से हो गया, कहा फिर आजा मैदान में, आजा मैदान में। आ गए, कौन आ गए? बोलो इमाम। हाँ, कपड़े मैले कुचेले, गरीबी का जमाना, फटा पुराना कपड़ा, यूँ आके खड़े हो गए सामने। और इसने कहा मैं पूछूँ 3 सवाल? इमाम साहब ने कहा इसीलिए तो आया हूँ। फिर कहता मार डालेंगे, उसमें तेरा क्या जाता, पूछ तू पूछ, तेरा काम शुरू कर। अब बुढ़ा इतना गुस्से में और उसके सब स्टूडेंट चारों तरफ फैले हुए, उसने पहला सवाल पूछा। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना पढ़ा लिखा होगा छोटे छोटे सवाल पूछेगा, छोटे छोटे सवाल पूछेगा, जैसा है वैसे सवाल पूछेगा। उसने पहला सवाल पूछा, पहला सवाल पूछा, ये बताओ कि तुम अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह के ऊपर कौन? तुम अल्लाह को मान। और उसने बताया कि देखो तुम कहते हो कि इंसान पैदा हो गए, इंसान से पहले जिन्नात पैदा हुए, जिन्नात से पहले फरिश्ते पैदा हुए, और फरिश्ते से पहले वो 4 बड़े बड़े फरिश्ते पैदा हुए, और सबको तुम कहते हो कि अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह के ऊपर कौन? मुश्किल सवाल है ना। अभी तो एक सवाल हुआ, दूसरा सवाल उससे मुश्किल पूछ रहा। इमाम साहब ने कहा दूसरा भी पूछ ले, पहले तो 3 पूछ ले। उसने दूसरा सवाल क्या पूछा? तुम्हारा अल्लाह, तुम कहते हो अल्लाह है, कहाँ देखता है? अल्लाह देखता कहाँ है? इससे अगर अल्लाह सामने देखता है, पीछे क्या होता है अल्लाह को नहीं मालूम। अल्लाह अगर राइट में देखता है तो लेफ्ट में क्या होता है अल्लाह को? भाई अल्लाह कहाँ देखता? और उसने कहा, वो बूढ़े ने कहा, देखो जैसे मैं तख्त पे बैठा हूं, मुझे सामने पूरी गैदरिंग नजर आती है, सारा मजमा नजर आता है, लेकिन पीछे कोई सोता हो तो मेरे को नजर, तो तुम्हारा अल्लाह किस तरफ देखता है? अगर वो सामने देखता है तो पीछे गुनाह करो, कोई मामला नहीं। अगर अल्लाह राइट में देखता है तो लेफ्ट में गुनाह करो, कोई मामला नहीं। अल्लाह देखता कहाँ है? मुझे ये देखना है कि अल्लाह देखता है। इमाम अबू हनीफा, उम्र कितनी थी? 20-22 साल। कहने लगे तीसरा सवाल भी पूछ ले। कहा तीसरा सवाल उससे मुश्किल है, तुम्हारा अल्लाह करता क्या है? तुम्हारा अल्लाह करता क्या है? बस कहा कि मेरे सवाल खत्म, जवाब दो वरना तैयार हो जाओ, जबा कर दिए जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे। इमाम अबू हनीफा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। 20-22 साल के जवान क्या कहते मालूम है? हाँ हाँ, तूने 3 सवाल कर लिए, 3 सवाल कर लिए। नंबर 1, अल्लाह के ऊपर कौन? नंबर 2, अल्लाह देखता कहाँ है? नंबर 3, अल्लाह करता क्या है? तूने 3 सवाल पूछ लिए, मैं जवाब दूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मेरी एक कंडीशन है। कहा क्या कंडीशन है? कहा जब तूने सवाल पूछा, तू तख्त पर बैठा और मैं सामने खड़ा, अब मैं जवाब दूंगा, मैं तख्त पर बैठूंगा, तू सामने खड़ा हो जाएगा। अब वो बुड्ढे को बोला तख्त पर से उठो, कोई उठे? मेरे को अभी कोई बोले चल छोड़ कुर्सी, अरे कुर्सी बहुत मुश्किल से मिलती है। अब बुड्ढे को कहा, इमाम साहब ने तो कह दिया 22 साल मेरी उम्र है, भले मैं गरीब हूं, भले मेरे घर में खाने का नहीं होगा, लेकिन अगर तुझे सवाल पूछने का हक है कि स्टेज पर तख्त पर बैठे, तो मुझे भी जवाब देने का हक है कि मैं यहां बैठूंगा और तू सामने खड़ा होगा। तो वो तो बुढ़ा तो पूरा तिलमिला गया, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, मैं तख्त से उतरूंगा? तो इमाम साहब ने कहा मैं जवाब भी नहीं दूंगा। अगर तू इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन, तूने तो मार डालने की कंडीशन रखी, और मैं क्या इतनी कंडीशन नहीं रख सकता कि तू सामने खड़े हो जा? चलो बुढ़ा उठा, आहा कैसा चेहरा हुआ होगा उसका, हाँ अपने 100 स्टूडेंट को लेकर आके सामने, और इमाम अबू हनीफा अल्हम्दुलिल्लाह, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आई तख्त के ऊपर बैठे। कहा योर फर्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह के ऊपर कौन? अब तो बुड्ढा सामने खड़ा ना। तो इमाम अबू हनीफा ने पूछा तेरे को गिनती गिनना आती है, नंबर्स गिनना आते? बताओ बुड्ढा गुस्से होगा कि नहीं होगा? जो इतना ज़्यादा इल्म और नॉलेज रखता होगा उसको बोलो 1-2-3 बोल, कितना भारी पड़ेगा उसको। तो इमाम साहब ने कहा तुझे गिनती आती है? तो बूढ़े ने कहा क्यों नहीं आती है? तो कहा शुरू कर गिनना। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इमाम साहब ने कहा बस, कितने पे रोक दिया? तो बड़ा गुस्से हुआ, ये मेरी मेरी मेरा इंसल्ट हो रहा है। वो बूढ़ा कहता मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरे पास गिनती गिनवाई 1 से लेके। इमाम साहब ने कहा अब उल्टा गिन, उल्टा, रिवर्स, उल्टा। तो उसने गिनना शुरू किया, गुस्से में गिनना शुरू किया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इमाम साहब ने कहा 1 के ऊपर, बोलो ना आप लोग, बोलो ना, 1 के ऊपर। तो बुड्ढे ने कहा 1 के ऊपर कुछ भी नहीं। इमाम साहब ने कहा तेरी मामूली गिनती में 1 के ऊपर कुछ भी नहीं, मेरा खुदा भी 1 है, उसके ऊपर कोई भी नहीं। भाई सही है कि नहीं सही? इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तूने मामूली गिनती गिन ली। अरे तूने मामूली गिनती गिन ली, तेरी गिनती से पता चल गया 1 के ऊपर कोई नहीं, तेरी गिनती में पता चल गया 1 के ऊपर कोई नहीं। इमाम साहब ने फरमाया मेरा खुदा भी 1, बोलो मेरा खुदा भी 1। जब मामूली गिनती में 1 आ जाए उसके ऊपर कोई नहीं, तो मेरा खुदा भी 1 है, उस पर कोई नहीं। और इमाम साहब ने फरमाया तू माने न माने ने, मेरे खुदा ने खुद कह दिया, पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इमाम साहब ने फरमाया अगर गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, मेरा रब खुद कहता मैं 1, तो मेरे खुदा के ऊपर भी कोई। पूरा मजमा बोले ना, वह इलाहु को मिला हूँ वाहिद ला इलाहा इल्लाहू अर्रहमानुर रहीम। सुभान अल्लाह। तो बोलो ना, हो गया ना एक सवाल का जवाब, हो गया कि नहीं हो गया? वो बुड्ढे का चेहरा कैसा होगा? किताब में लिखा नहीं कैसा होगा, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ बुड्ढे का चेहरा चूसे हुए आम की तरह हो गया होगा, कि 20-22 साल के जवान ने फटाक करके जवाब दे दिया और पूरे मजमे ने नारा लगा दिया और सब खामोश हो गए। तो इसने बुड्ढे ने गुस्से में कहा चलो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, अल्लाह देखता कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन, अल्लाह देखता कहाँ है? इमाम अबू हनीफा कहाँ बैठे थे? कुर्सी पर। कहा मैं अब हुक्म देता हूँ सब लाइट बंद कर दो। अब लाइटें, उस जमाने में लाइटें नहीं होती थी, ट्यूबलाइट बल्ब ने ऐसे कुमकुमे जलते थे, कुमकुमे। कहा सब ऑफ कर दो। सब ऑफ कर दिया। कहा बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा कर दो। अंधेरा, इतना अंधेरा कर दिया किसी को हाथ भी नजर ना आए तो बुड्ढा घबराया, अंधेरे में मारेगा तो नहीं? वो बुड्ढा घबराया कि अंधेरे में मारेगा तो नहीं, तो गुस्से में कहता ये काय को सब ऑफ काय को कर दिया, लाइट क्यों खत्म हो गई? इमाम साहब ने कहा जवाब दे रहा हूँ, बीच में बोलने का नहीं, तुम सवाल पूछ रहे थे मैं बोला था इसलिए बिल्कुल नहीं। तो बुड्ढा खड़ा है, उसके सारे स्टूडेंट खड़े, और इमाम अबू हनीफा ने बादशाह को क्या कहा जब सब अंधेरा हो गया? कहा कि कैंडल लाओ, कैंडल समझते हो ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती लाओ। उस ज़माने में 2 आने की मोमबत्ती मिलती होगी भाई, उस ज़माने में 2 आने की मोमबत्ती मिलती होगी, वो कैंडल, कहा कि वो लाओ। चलो मोमबत्ती लाई गई और मोमबत्ती को बीच में रखा, और इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा? वो बुड्ढे से कहा मोमबत्ती जला, मोमबत्ती जला। उसने जैसे मोमबत्ती जलाया तो जहां बिल्कुल अंधेरा था, जैसे मोमबत्ती जली तो उजाला होने लगा। इमाम अबू हनीफा ने पूछा लाइट हुई? आके हाँ लाइट हो गई। कहाँ हुई? फ्रंट में, बैक में, राइट में, लेफ्ट में, कहाँ पे उजाला हुआ? कैंडल रखी है, उजाला पूरे कमरे में हो रहा है। पहले वो आदमी नजर नहीं आता था, वो भी नजर आता है, वो आदमी भी नजर आता है, कोई आगे बैठा है वो भी नजर आता है, पीछे देखो तो पीछे वाला भी नजर आता है, उजाला सारे कमरे में हो गया। तो इमाम अबू हनीफा ने बुड्ढे से कहा तूने कैंडल जलाई, 2 आने की कैंडल है, 2 आने की मोमबत्ती जलाई, उसकी रोशनी कहाँ गई? तो बुड्ढे ने गुस्से में कहा अरे पूरे कमरे में रोशनी आ गई। बस इमाम अबू हनीफा ने फरमाया 2 आने की मोमबत्ती की रोशनी पूरे कमरे में आ गई, मेरा खुदा नूर ही नूर है, मेरा खुदा नूर ही नूर है। जब मोमबत्ती की रोशनी कमरे के चारों तरफ जा सकती है तो मेरा खुदा का नूर सातों आसमान और सातों जमीन पर जा सकता है। बात सही है कि नहीं? और इमाम साहब ने कितने अच्छे अंदाज में कहा, इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू दो आने की मोमबत्ती लेकर आ गया और दो आने की मोमबत्ती को तूने जलाया, पूरा कमरा रोशन हो गया, ऊपर भी रोशनी नजर आई, नीचे भी रोशनी नजर आई, दाएं भी रोशनी नजर आई, बाएं भी रोशनी नजर आई। अगर तेरे दो आने की मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन कर दे तो मेरा खुदा तो, बोलो बोलो मेरा खुदा तो नूर ही नूर, बोलो मेरा खुदा तो, और बुलंद आवाज से मेरा खुदा तो नूर ही नूर। जब मोमबत्ती की रोशनी पूरे कमरे में पहुंचे तो मेरे खुदा के चेहरे पर 70,000 नूर के पर्दे, 70,000 नूर के पर्दे। साथ में पढ़ो ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरी कमिश्कातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी ज़ुजाजा। और आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया, पूरा मजमा पढ़ेगा, कि इमाम आजम ने यह आयत पढ़कर सुनाई, मोमबत्ती की रोशनी ने पूरे कमरे में उजाला कर दिया और मेरा खुदा तो, जोर से बोल, इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़कर बताई, नूरुन नूरुन आला नूर, पूरा मजमा पड़ेगा आज अल्लाह की वहदानियत, नूरुन आला, और बुलंद आवाज से नूरुन आला नूर, यहदिल्लाहु लिनूरी मन यशा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, मेरे नूर का पर्दा, फिर नूर का पर्दा, नूर का पर्दा। अल्लाह फरमाते, मेरी इंतहा नहीं, मेरे नूर की भी कोई इंतहा नहीं। कितने सवाल के जवाब हो गए, अब कितना बाकी, अब बुड्ढे का चेहरा कैसा होगा वो मैं आपसे पूछूंगा, बाद में बता देना मेरे को, हर वक्त मैं ही बताता जाऊं कि उसका चेहरा कैसा हुआ होगा। वो बुड्ढा बड़े गुस्से में, हाँ दो जवाब हो गए, तीसरा जवाब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह करता क्या है, अल्लाह करता क्या है। तो इमाम साहब ने कहा, वो दो जवाब तो मेरे को थोड़े भारी पड़े, बाकी तीसरा जवाब तो इतना ईजी, अल्लाह करता क्या है वो तो सबने देख लिया। फिर वो गुस्से में पूछा, क्या करता है, कहा सबने देख लिया। वो और गुस्से में आ रहे, करता क्या है, कहा सबने देख लिया। वो खुदा ये करता है कि पढ़े लिखे बुड्ढे को सामने खड़ा करता है और गरीब को तखत पर बिठा देता है। जो पहले बुड्ढा तखत पे बैठा था, शाही मेहमान खाने में खाना खाकर आया, अल्लाह ने जलील करके मेरे सामने खड़ा कर दिया, और उसी अल्लाह ने ये गरीब फटे कपड़े वाले को तख्त पर बिठा दिया। ये मेरा खुदा हमेशा करता, बोलो ना, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देने वाला, जिसको चाहा इज्जत दे दिया। इमाम आदम इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, वो खुदा जो मेरे जैसे गरीब को तख्त पर बिठाकर इज्जतों से माला माल कर दिया और तुझे तख्त से उतार कर आज पूरे कूफा में जलील कर दिया। मेरे दोस्तों, यहां तक वाकया किताबों में लिखा है, आगे क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे तो इस वाक्य से ये बात आपको बताना है कि आज कसम खा के सीना ठोक कर कहे, अल्लाह की जात से बढ़ के कोई जात नहीं, लेकिन हमारा भरोसा है अल्लाह पर, हमारा भरोसा। आज मेरे दोस्तों, कोई भी मामला हमारे आड़े आता है, हम हज़ारों के सामने बातें रखते हैं, अल्लाह के सामने कोई दो रकात पढ़ने को तैयार नहीं। आज जो भी हो रहा है दुनिया में, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही है, हमने क्या किया, हमने क्या किया, पैसा दिया ना, हाँ पाउंड जमा हुए ना। मेरे दोस्तों, एक काम अगर हम करे होते तो क्या जाता हमारा, ये पैसा तो पहुँचेगा, जब पहुँचेगा तब पहुँचेगा, लेकिन काश, और ये ऐसा तो है नहीं कि अभी हम हालात सुन रहे, पहली मरतबा सुन रहे भाई, पहली मरतबा गैरों का हमला हमने देखा। अरे मेरे दोस्तों, हर साल कहीं ना कहीं बर्बादी, कहीं ना कहीं बच्चों को यतीम करना, कहीं ना कहीं बच्चों के सरों को दीवारों से पटकना और उनके दिमाग को बाहर निकालना, और मेरे दोस्तों बाप के सामने बेटी की इज्जत को लूटना, ये सब कुछ हो रहा है। हमने क्या किया, पाउंड दे दिए ना, पाउंड पहुंचेगा तब पहुंचेगा। अरे ہے میرے دوستو, اگر ہمارا ایمان جاگا ہوا ہوتا, اللہ پر بھروسہ ہوتا, ہم روزانہ دو رکعت نماز پڑھتے. اللہ مدد کرنے والا تو ہی اللہ, اے اللہ وہ مظلوموں کی مدد کر لے, اور ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو دے دے ورنہ زمین کو پاک کر دے. روزانہ دو رکعت نماز پڑھ کے پہنچایا ہوتا, کل قیامت میں وہاں کا مسلمان کہتا تیری نمازوں نے ہماری زندگی کو بخش دیا تھا. کس نے دو رکعت نماز پڑھی؟ آج یہ حالات کے لیے کہ اللہ وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے, اللہ یتیم ہو رہے ہیں, اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ میرے کو جتنا دینا تھا دے دیا, لیکن اللہ کب پہنچے گا وہاں پہ؟ ہم کو نہیں معلوم ہے کب پہنچے گا, کیا فارمیلٹیز ہوگی, کیسے پہنچے گا, لیکن اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ میں دو رکعت تیرے سامنے پڑھتا, اللہ دو رکعت تیرے سامنے پڑھتا, اللہ مظلوموں کو بچا لے, اللہ تیری مدد بھیج دے. اللہ تو نے بدر کے میدان میں مدد بھیجی تھی, اللہ تو نے حنین میں مدد بھیجی تھی, اللہ تو نے خندق میں مدد بھیجی تھی, اللہ تو نے احد میں مدد بھیجی تھی, وہاں بے شک ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, وہ نیک تھے. اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں, اللہ اللہ بھیج دینا. پڑھی من پڑھی دو رکعت پڑھی, پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, پڑھی کیوں؟ اور کہنے کو بھی میرے کو شرم آتی کہ پڑھو. ہاں صحیح میں میرے دوستو کہنے کو شرم آتی ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ اور ان کو ایصال ثواب کر, کہنے کو شرم آتی. وہ کیا دو رکعت نفل پڑھے گا جو پندرہ پندرہ دن سے فجر کی نماز کو چھوڑ کے بیٹھتا ہے؟ یہ تو رمضان ہے, یہاں رمضان ختم نماز ختم. ہاں میرے دوستو ہمارے یہ جوان جوان بیٹھے پندرہ پندرہ دن تک فجر نہیں پڑھے, پندرہ پندرہ دن تک میرے دوستوں ہماری پانچ وقت کی نماز نہ ہوئے جو فرض چھوڑتا ہوگا, کس منہ سے کہوں گا کہ دو رکعت پڑھ کے وہاں ثواب پہنچا دے؟ اس لیے کہ جو خدا حضرت عمر تو کیا کہتے تھے معلوم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کو اچھا رکھے, آمین بولو آمین بولو. حضرت عمر وہ تھے وہ جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے او نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اور پھر کہتے تھے میں سب کو نصیحت کرتا ہوں, دوستی کرنا ہے کسی سے دوستی کرنا ہے پہلے پوچھ لے وہ نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا, اگر پڑھتا ہے تو دوستی کر لے, بے نمازی سے دوستی مت کرنا, اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. شرم سے مر جاؤ میرے دوستو, آج ہم سب سے دوستی کر رہے ہیں, سب سے دوستی کر رہے ہیں. کبھی اس کو پوچھو تو نماز پڑھتا ہے, سفر میں نماز پڑھتا ہے, حسر میں نماز پڑھتا ہے, بیماری میں نماز پڑھتا, عمر جیسا عمر. امیر المومنین کہتا بے نمازی سے دوستی مت کرنا, مت کرنا بے نمازی سے دوستی, جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے بھی دھوکہ دے گا. تو وہی میں بھی کہہ رہا ہوں, جو فرض نہیں پڑھتا, جو فرض نہیں پڑھتا وہ کیا نفل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرے گا؟ جو اللہ کو آج تک اپنا فریضہ نہیں بتا سکا, اور صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو, آ جاؤ میرے پیارو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں جب حالات ایسے کڑک کڑک ہوتے نا, اور ایسے تھر تھرانے والے حالات آتے نا, ایسے کپ کپانے والے حالات آتے نا, تو خواجہ معین الدین چشتی کو مت بھولو. اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی وہ بات یاد رکھو, اے مسلمانوں دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ بھوک بھوک سے تڑپائے, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ بچوں کو ذبح کروا دے, سمجھ لینا جو خدا وہاں عذاب بھیج سکتا وہ خدا یہاں بھی بھیج سکتا ہے. یہاں انگلینڈ کو دیکھتا ہوں نا, کہو الحمدللہ, کہو الحمدللہ, اللہ نے اللہ نے اللہ نے ہم کو بھوکا سلایا. وہ الگ بات ہے, پیٹ نہیں بھرتا وہ الگ بات ہے, پیٹ نہیں بھرتا ہمارا, لیکن سچ بتاؤ اللہ نے بھوکا مارا ہم کو؟ ارے بولو نا, یہاں اذان دینے سے کسی نے روکا؟ ارے بتاؤ نا, کسی نے اذان دینے سے روکا؟ کسی نے نماز پڑھنے سے روکا؟ کسی نے دعوت و تبلیغ کے کام سے روکا؟ کسی نے خانقاہ کے کام سے روکا؟ کسی نے بیان کرنے والے کو روکا؟ نہیں میرے دوستو, اللہ نے کھلایا بھی, اللہ نے پلایا بھی, اللہ نے پہنایا بھی, لیکن اللہ چودھویں پارے میں کہتا ہے کچھ بستی ایسی ہوتی ہے جن کو ہم کھانا بھی دیتے ہیں, جن کو پانی بھی دیتے ہیں, لیکن وہی بستی جب میری نافرمانی کرتی ہے, اللہ کہتا ایسا بھوک سے تڑپاتا کہ روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں کرتا. یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں بولتا, قرآن میں پارا نمبر 14 آپ لوگ بھی دیکھو نا, دیکھو گے نا انشاءاللہ, پارا نمبر بالکل اخیر اخیر میں جب دو رکو بچتے ہیں نا, وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
ياتيك رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی ایسی بستی کو مثال کے طور پر دیکھ لو, امن والے ہیں, سکون والے ہیں, اطمینان والے ہیں, محبت والے ہیں, کھانے والے ہیں, پینے والے ہیں, چاروں طرف سے روزی آتی ہے چاروں طرف سے, لیکن اللہ کہتا فکفرت بے انعم اللہ, میری نعمت کی ناقدری کی. اللہ کہتا نماز نہیں پڑھی, میرا قرآن ہاتھ میں نہیں لیا. اللہ کہتا اب تو بھی چکھ لے. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ کہتا ایسا بھوکا بھوکا مار ڈالوں گا کہ روٹی کا ٹکڑا بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارے دوستو ہم بات ختم کریں, اس سے پہلے یہ دو بات پر آ جاؤ. سب سے پہلی بات تو آ جاؤ, بولو لا الہ. وہ سب انعام چاہیے نا, انعام چاہیے نا, ہاں بولو نا, چاہیے نا. میں آگے والی بات بتاؤں میرے دوستو, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. بولو نا محمد ال, پورا مجمع بولے نا محمد ال, اور بلند آواز سے محمد ال, اور ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں. جیسا بھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا, ہمارے نبی نبی نہیں, وہ پھول تھا جو گلشن طیبہ میں کھل گیا تھا. بولو نا وہ پھول تھا جو گلشن طیبہ میں کھل گیا تھا, اور اللہ کی قسم وہ نور ہدا, نور ہدا, نور ہدا, اللہ نے قیامت تک کا اسے بنا لیا تھا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی میرے دوستو. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا نا انشاءاللہ, تو ہم دوسری بات پہ آ جائے, دے گا نا ساتھ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. بولو نا ہاں, بولو نا ہاں, پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو, ہمارے نبی کی وہ شان ہے, ہاں قاری صالح صاحب, اللہ نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی کہ کچھ صفت اللہ نے کہا یہ میرے واسطے ہے, لیکن اب سے میں نے محمد کے واسطے بنا دیا ہے. قرآن اٹھاؤ, اللہ کہتا میں رؤوف, بولو نا, اللہ کہتا میں رؤوف مہربان, بے شک اللہ مہربان ہے. آگے اللہ کہتا میں رحیم رحم کرنے والا. اللہ اپنے بارے میں کہتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں رؤوف, بولو نا, اللہ تعالیٰ فرماتا میں رؤوف, آگے اللہ فرماتا میں, لیکن اللہ نے فرمایا اگر میں نے اپنے آپ کو رؤوف اور رحیم کہہ دیا, میں نے میرے مصطفیٰ کو بھی رؤوف اور رحیم بنا دیا. بولو نا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, رؤوف اور ہمارے نبی بھی رؤوف. قرآن میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اللہ فرماتا میں رؤوف الرحیم, میں نے میرے مصطفیٰ کو بھی رؤوف الرحیم بنا دیا. اچھا اللہ ہم سے قریب ہے نا, بولو نا اللہ ہم سے قریب ہے نا. کوئی ہم کو پوچھے اللہ کتنا قریب ہے تیرے سے, اللہ تیرے سے کتنا قریب ہے, تو ہم کو یہ کہنا پڑے گا, یہ کہنا پڑے گا جیسے ہمارے حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے بدن میں, میرے بدن میں جو میری شہ رگ ہے, جو میری خون کی رگ ہے, اللہ کہتا وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا میرا بندہ میں تجھ سے اور بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن اللہ نے کیا کہا, اے میرا بندہ جیسا میں تجھ سے قریب ہوں, اللہ کہتا میری قسم مصطفیٰ بھی تجھ سے بہت قریب ہے. قرآن میں 26ویں پارے میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تبارک و تعالی 26ویں پارے میں فرماتے اے میرا بندہ تیرے بدن میں بہنے والی رگے تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا پروردگار تجھ سے, بولو نا تجھ سے. اب 22ویں پارے میں آؤ, اللہ نے کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 22ویں پارے میں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے بندوں تم اپنی جانوں کے اتنے قریب نہیں جتنا مصطفیٰ تم سے قریب. وہ بھی قریب, یہ بھی قریب, وہ بھی رؤوف اور یہ بھی, اور اللہ جہاں کہتا ہے کہ میں رحمت والا, اللہ کہتا میں رحمت والا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرماتا میری رحمت, میری رحمت, میری رحمت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کہتا میری رحمت, جہاں اللہ نے کہا میری رحمت ہے وہیں پر کہا ایسا مصطفیٰ دیا ہے رحمت للعالمین بنا کر دیا ہے, سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر ہم نے ان کو بھیجا ہے. لیکن میرے دوستو مجھے تو صرف اتنا بتانا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں میرے دوستو, سچ بتاؤں نا,
ये कलमा जो हमको मिला ना, हम नबी से मोहब्बत करेंगे,